गुस्से से पागल। वसुंधरा के चेहरे पर अचानक एक हल्की सी चमक आ गई। फिर बिना देर किए उसने जल्द ही नीले रंग के लिफाफे में लिपटे हुए कुछ कागज अरमान के सामने रख दिए। उन कागजों को अरमान ने केवल एक नज़र भरकर देखा, फिर वसुंधरा मीठी सी आवाज में बोली, तुम बस एक काम करो, इन कागजों पर दस्तखत कर दो, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। उसने बिल्कुल शहद में डुबोई हुई आवाज के साथ ये कहा था। अब जैसे ही वसुंधरा ने ये कहा तो वैसे ही अरमान ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत दस्तखत कर दिए और मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अब जैसे ही अरमान कमरे से बाहर निकला, वीर तुरंत वसुंधरा के पास आया और एकदम से हैरान होते हुए बोला, मॉम, ये यहाँ क्या करने आया था? और मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि आप अभी तक जिंदा हैं। वीर के मुंह से ये सवाल सुनकर अगले ही पल वसुंधरा अचानक जोरों से हंसने लगती है, फिर अपनी आईब्रो को मटकाते हुए उससे बोली, बेटा बेटा, मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, ये देखो अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इतना कहकर उसने जल्दी से सारे के सारे सिंघानिया मेंशन और सिंघानिया एम्पायर के कागजात, जो वसुंधरा ने अपने बलबूते पर जैसे तैसे अजीत से तैयार करवाए थे, वीर के सामने रख दिए। वीर ने जैसे ही देखा कि अब सब कुछ उसके और उसकी माँ के नाम हो चुका था तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शानदार मुस्कान फैल गई। वो आगे बढ़ा और अपनी माँ को गले से लगा लिया, फिर एक्साइटेड होते हुए बोला, वाकई मॉम, मानना पड़ेगा, आप तो काफी चालबाज निकली, लेकिन आपने उस अरमान सिंघानिया जैसे खड़ूस इंसान को अपने वश में कैसे किया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरह आपके झांसे में कैसे आ गया। उसके शब्द सुनकर वसुंधरा की आंखों में चालाकी की चमक थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और रहस्यमयी आवाज में बोली, क्या तुझे वो दिन याद है जब मैंने अजीत के जरिए तुझसे कुछ दवाइयां मंगवाई थीं? ये सुनकर वीर के सामने वो दिन याद आ गया जब वो रौनक के लिए चाट पकौड़ी लेने बाहर गया था तो अजीत ने उसे कुछ सफ़ेद पाउडर के लिफाफे दिए थे। ये याद आते ही वीर एकदम से हैरान होकर पूछता है, लेकिन उस पाउडर में क्या था मॉम? इस बात पर वसुंधरा एक पल के लिए चालाकी से मुस्कुराई, फिर बोली, उसमें कुछ ऐसा नशा था जिससे मैं अरमान सिंघानिया को अपने वश में कर पाई। भले ही अभी वो पूरी तरह से मेरे काबू में नहीं है, लेकिन हाँ, वो मेरी किसी भी बात को मना नहीं कर सकता। उस पाउडर में ऐसा कुछ नशा था कि जब जब वो उसे पिएगा तब तक अगले एक घंटे के लिए वो पूरी तरह मेरे वश में रहेगा। मैं जो भी कहूंगी वो वही करेगा, जैसे कि उसने अब इन पेपर्स पर साइन कर दिया है। वैसे भी आज उसने उस पाउडर का आखिरी डोज ले लिया है, अब अगले एक घंटे तक वो हमारे काबू में रहेगा। तुम चाहो तो जो कुछ भी उससे करवाना हो करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, एक घंटे के बाद वो फिर से अपना असली बर्ताव में आ जाएगा। फिलहाल अब हम कमजोर नहीं है वीर, मौका मिलते ही मैं इन सबको बताऊंगी कि वसुंधरा क्या चीज है। ये कहते हुए वसुंधरा का चेहरा बेहद भयंकर लग रहा था। उसकी आंखों में घर वालों के लिए नफरत साफ साफ छलक रही थी, लेकिन वसुंधरा की बात सुनकर वीर तो अब अपने ही किसी और ख्यालों में डूब चुका था। उसने कई दिनों से किसी लड़की के साथ वक्त नहीं बिताया था, और अब जब सिंघानिया मेंशन और एम्पायर उसके नाम हो चुके थे तो उसके मन में सिर्फ ऐशो आराम के विचार आने लगे। वो बेहद खुश था। वसुंधरा जो एक चालबाज औरत थी, वो जानती थी कि ये सब कुछ अभी उजागर नहीं किया जा सकता। इधर अरमान, जो वसुंधरा के वश में था, सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गया। अचानक उसकी आंखें भारी होने लगीं। वो पूरी तरह थका और सुस्त महसूस कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र अचानक आस्था पर पड़ी तो वैसे ही उसे अपने कमरे में देखकर उसका माथा झनझना उठा और वो एकदम से आस्था पर भड़क उठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? और इस कमरे का बायोमेट्रिक लॉक तो सिर्फ मुझे पता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? अरमान ने जैसे ही ये सवाल किया, आस्था, जो काफी उदास और गुमसुम बैठी थी, उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अरमान की तरफ देखकर एकदम से बोली, हम तो यहाँ बस आपसे बात करने के लिए आए थे मिस्टर सिंघानिया। वो लड़की आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको इसके साथ नहीं होना चाहिए। आस्था के शब्द सुनकर अरमान का शरीर क्रोध से भर उठा था और अगले ही पल वो छल्ला कर बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन लड़की? किस लड़की की बात कर रही हो तुम? ये शब्द सुनकर आस्था एक पल के लिए दंग रह गई, मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन तभी अरमान की बात पर गौर करने के बाद आस्था कुछ उखड़े अंदाज में बोली, अगर आप मेरे साथ किसी तरह का कोई मजाक कर रहे हैं या फिर कोई खेल खेल रहे हैं तो मैं कह देती हूँ आपको, मिस्टर सिंघानिया, आप इसी वक्त ये खेल रोक दीजिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो आप उस वसुंधरा जैसी धोखेबाज चालबाज औरत को गले लगाते हैं और साथ ही अपनी सेक्रेटरी को गर्लफ्रेंड बनाकर सिंघानिया मेंशन में लेकर आते हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? क्या आपको जरा भी एहसास है बाकी सब घर वालों पर इस बात का कितना बुरा असर पड़ रहा? अब जैसे ही आस्था ने ये कहा तो ये बात सुनकर अचानक अरमान की आंखें लाल सुर्ख होने लगी। वो एकदम से आगे बढ़ा और गुस्से में आकर आस्था का गला जोरों से पकड़ लिया। उसकी लाल आंखों में अजीब सी आग धधक रही थी और वो आस्था पर चीखते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवी जैसी माँ के लिए ऐसे शब्द बोलने की? खबरदार अगर तूने उन्हें दोबारा धोखेबाज कहा तो। अरमान की आंखें साफ साफ गवाही दे रही थीं कि इस वक्त वो अपने आपे में बिल्कुल भी नहीं है। अब अरमान की आंखों में नफरत देखकर आस्था की आंखें जैसे बाहर निकलने को थीं। अरमान ने आस्था का गला जोरों से पकड़ा रखा था, इसलिए उसके चेहरे पर खून जमा होने लगा था। आस्था का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, लेकिन अरमान उसके गले को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक आस्था ने मार्शल आर्ट्स का प्रयोग करते हुए अरमान के हाथ पर जोर से प्रहार किया और उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से अरमान सीधा जाकर अपने बेड पर गिर पड़ा। बेड पर गिरते ही उसका सिर अचानक भारी होने लगा और कब उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई उसे खुद भी एहसास नहीं रहा। अरमान को इस हालत में देखकर आस्था के हाथ कांप उठे और वो पूरी तरह घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो जल्दी से आकर अरमान के पास बैठी और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। अरमान जी, उठिए ना, प्लीज उठिए ना। लेकिन जब अरमान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आस्था ने घबराकर फौरन ग्रुप मैसेज भेज दिया। देखते ही देखते सभी लड़के और लड़कियां अरमान के कमरे में पहुंच चुके थे। सभी लोग जल्दी अरमान के कमरे में आ गए थे। ध्रुव ने जल्दी से आगे बढ़कर अरमान को चेक करना शुरू किया और रश्मि भी उसका पूरा साथ दे रही थी। इस दौरान किसी ने भी आस्था से कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि जब से अरमान पर वायरस इंजेक्ट हुआ था तब से वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। सबसे बड़ा झटका तो ये था कि उसने वसुंधरा को गले लगाया था। उसकी ये हरकत सबको अंदर तक हिला गई थी। अब देर ना करते हुए ध्रुव ने अरमान को रिलैक्स करने के लिए एक इंजेक्शन दिया, फिर सबकी ओर देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि अभी हमें अरमान भाई को आराम करने देना चाहिए। और आस्था भाभी, आखिर आपकी ऐसी क्या बात हुई थी अरमान भाई से जो वो इस तरह से अचानक बेहोश हो गए? अब सबकी नजरें आस्था पर टिक गईं। उसका चेहरा और गला अभी भी पूरी तरह लाल था। अरमान की उंगलियों के निशान उसके गले पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ध्रुव ने उस निशान को नोटिस करते ही जल्दी से पूछा,
भाभी आपके साथ क्या हुआ और ये निशान आपके गले में कैसे आए? क्या हुआ आपके साथ? आप प्लीज हमें सब कुछ साफ साफ बताइए। ये सवाल सुनते ही कमरे की हवा जैसी ठहर सी गई। सबके दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। आस्था ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। इसके बाद उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। वहां मौजूद सभी लोग अचानक हुई इस घटना से सन रह गए थे। हर किसी के मन में यही सवाल था, आखिर अरमान को हो क्या गया है? तभी नानी माँ, दादी जी और अभिमान जी, जो बाहर से ही सब बच्चों को एक साथ कमरे में जाते हुए देख चुके थे, वो खुद को रोक नहीं पाए। अभिमान जी अंश को संभालते हुए सीधे अरमान के कमरे में पहुंचे। वहां जाकर जैसे ही उन्होंने पूरी सिचुएशन देखी और आस्था की बातें सुनी तो वे पल भर के लिए सचमुच स्तब्ध रह गए, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वहीं नानी माँ अब तुरंत ही आहान की कमीज खींचते हुए घबराई आवाज में बोली, आहान बिटवा, तुमने जो बताया था उसका क्या नाम था, उसका मोनालिसा, वो कब तक आएगी? उसे बुला लो, हमें लग रहा है कि दामाद जी के साथ कुछ ना कुछ परेशानी है। हमें एक बार उनकी झाड़फूंक करवा ही लेनी चाहिए। इस बार तो हमें दामाद जी पर साया वगैरह जैसा कुछ लग रहा है। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा तो ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि कोई भी नानी माँ की इन बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। तभी आस्था तुरंत बोल पड़ी, भैया हमें भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अरमान जी पहले पूरी तरह से शांत थे, लेकिन जैसे ही हमने उनके सामने वसुंधरा के बारे में बातें करना शुरू किया, अचानक से उनके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमारी नज़रों से पूरी तरह छिपा हुआ है। अगर नानी माँ कह रही हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो हमें भी तसल्ली करवा लेनी चाहिए और किसी न किसी को बुलाकर उनकी झाड़फूंक करवा देनी चाहिए। अब भूत प्रेत और आस्था के मुंह से निकली हुई बातें सुनकर सभी लोग ने कन्फ्यूजन से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वहीं लड़कियां तो हैरान थीं, राधिका, रश्मि और वंशिका ये तीनों इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थीं। लेकिन रौनक को लगा कि नानी माँ जो कुछ कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि रौनक नानी माँ के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया करती थी। जब बाकी सब अपने अपने काम से बाहर निकल जाते थे तो रौनक और नानी माँ दोनों ढेर सारी बातें किया करती थीं, और बातों ही बातों में जब नानी माँ अपने गांव के पिशाच के किस्से सुनाया करती थीं तो रौनक बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सारी कहानियां सुना करती थी। इसलिए अब रौनक ने नानी माँ की बात से सहमति जताई, हाँ हाँ हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें जरूर किसी न किसी को बुला लेना चाहिए। तब आहान जल्दी से बोला, मैं जाकर अभी उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ, मैं अभी उनसे यहाँ आने के लिए कह देता हूँ, देखना वो लेडी तांत्रिक जल्दी ही यहाँ आ जाएंगी। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की ओर भागा। वहीं आकाश, सुमित, ध्रुव, रश्मि, राधिका और वंशिका सभी आपस में एक दूसरे को परेशान होकर देख रहे थे। इस वक्त किसी का भी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन लोगों ने जो कुछ हो रहा था होने दिया और किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा आज पूरी तरह से फॉर्म में थी। इतना ही नहीं, उसने आज खुद को अच्छी तरह से सजने संवारने का फैसला किया, इसलिए उसने एक महंगी साड़ी चुनी जो दादाजी ने उसे पहले ही दी थी।
उसने अपने आप को घर की मलकिन की तरह तैयार किया। वहीं वीर भी अब रामू काका के रूप से एक बार फिर सूट बूट में आ गया था। जब से उसकी माँ ने उसे वो कागजात दिखाए थे जो ये गवाही दे रहे थे कि अब वे लोग इस घर के नौकर नहीं रहे, इसलिए वे दोनों पूरी तरह से तैयार थे इस घर के लोगों पर राज करने के लिए। इधर सभी लोग एक साथ सिंघानिया मैंशन के हॉल में जमा थे और बेसब्री से तांत्रिक के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसे उन्होंने ऑनलाइन बुक किया गया था। फिलहाल ध्रुव ने अरमान को जो इंजेक्शन दिया था उसके असर से वो 2 से 3 घंटे तक बेहोश रहने वाला था। तब तक उसका तांत्रिक से इलाज करवाना था ताकि होश में आने पर अरमान किसी तरह का कोई हंगामा ना करे।